ओम शांति, ओम शांति। तो अभी का सत्र है मुरली रिवीजन, और मुरली रिवीजन में आपको आगे बैठना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्लास है, हम बोलते जाएंगे आप सुनते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें आपको भी सुनाना है ना। मुरली रिवीजन का मतलब आपस में आज की मुरली पर चिंतन, लेन देन। तो आगे बैठेंगे तभी आप आज की मुरली के ऊपर कुछ आप बता सकते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे रोज बहुत प्यार से मुरली सुनते हैं, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं मुरली सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन करो, और जब हम मुरली चिंतन करते हैं तो मुरली का जो खजाना है वो अपना बन जाता है, फिर वो भूलता नहीं है कभी। तो जितना सुनना जरूरी है उतना ही जरूरी उसके ऊपर चिंतन करना। चिंतन जब हम करेंगे तब उसकी वैल्यू का पता चलेगा और हमारे व्यवहार में आएगा, हमारे जीवन में आएगा। तो कई बार जब हम पूछते हैं सामने वाले से, तो आपने मुरली सुनी, तो उन्होंने कहते हाँ मुरली सुनी। चार्ट भी भरते ना कि अमृत वेला योग किया, मुरली सुनी। लेकिन मुरली सुनने का मतलब क्या होता है वो भी हमें जानना है। मुरली सुनने का मतलब, मुरली सुनना अर्थात करना। जैसे माताओं को अनुभव होगा कि अपने बच्चे को कुछ कहते हैं कि बेटा ये करना है, और वो टाल मटोल करके चला जाता है, सुनता नहीं। माना आपने कहा और उसने किया नहीं। तो कई बार माताएं बोलती मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, कितना भी बोलती हूं लेकिन ये सुनता ही नहीं है। सुन तो रहा है बेटा, लेकिन कब मां ने बोला? जब उस बेटे ने किया नहीं। उसी प्रकार हमने मुरली सुनी लेकिन किया नहीं, तो आप सोचो क्या वास्तव में हमने मुरली सुनी? बाबा तो खैर नहीं कहेगा, लेकिन हम अपने आप से पूछ लें कि क्या हमने मुरली सुनी। तो मुरली सुनने का मतलब है करना। जिस दिन हमने मुरली से कोई बात लेकर प्रैक्टिकल में किया, उसी दिन समझो हमने मुरली सुनी। और अगर नहीं किया तो फिर सुनते हुए भी नहीं सुनी। तो क्या करना है? रोज मुरली सुनना है ना। सुनने का मतलब समा लेना और व्यवहार में लाना, स्वरूप में लाना। ठीक है, तो आज बाबा ने कहा सबको कौन सा पैगाम देना है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात। आज सारे संसार में दुख का कारण ही है अपने आप को भूलना, है ना? जीवन में जो हर प्रकार के अवगुण, बुराइयां, कमी कमजोरियां, हम देवता से, सतो प्रधान से, हीरे तुल्य से, जो हम कौड़ी तुल्य बने, तमो प्रधान बने, इनका क्या कारण? देह भान में आए ना। तो इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में बाबा बार बार क्यों कहते हैं कि बच्चे आत्मभिमानी बनो। आत्मा माना समाज में जितनी भी बुराइयां, कुरीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब, है ना, जो भी आप कह लो, सारी समस्याओं का जड़, सारी विघ्नों का जड़, चरित्र के पतन का जड़, तमो प्रधानता का कारण, इन सब का कारण है अपने आप को भूलना। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि अपने को आत्मा समझेंगे तो क्या बन जाएंगे? हाँ, सब दुख दूर हो जाएंगे और सुखी बन जाएंगे। सुख वास्तव में आत्मिक स्थिति में रहना ही संपूर्ण सुख है। कई बार हम ज्ञान में तो चलते हैं, कई बार हम कहते हैं ना ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो अनुभूतियां होना चाहिए, जो योग लगना चाहिए, जो एकाग्रता का अनुभव, वो नहीं होता। तो यही कारण है बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि कई बच्चे कहते हैं मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जिसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ हो। हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं ना कोई, कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। तो बाबा ने उसमें यही कहा कि जो बच्चे सारा दिन आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, इसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, हाँ, ये क्या है? यही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा ने क्या यही तो खूब पक्का किया ना अपने परिवार वालों को, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, जसोदा आत्मा है, एक एक का लिख करके पक्का किया। इसलिए संपूर्ण ज्ञानी वही है जो वास्तव में आत्म अभिमानी है। आत्म अभिमानी स्थिति सर्वोच्च स्थिति है सबसे। इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। जिस दिन हमें इसकी वैल्यू का पता हो जाएगा ना, उस दिन हम देहभान में आएंगे ही नहीं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि कितना अच्छा होता मैं बाबा के समय आया होता और बाबा को देखा होता, है ना। उस ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा को हम देखे होते, है ना, ज्ञान में लेट आए। ऐसे ही आप एक दिन अगर ये अनुभव करके एक दिन में ही आपको ऐसा लगेगा अरे मैं ज्ञान में इतने समय से चल रहा, लेकिन ये आत्म अभिमानी स्थिति का सुख मैंने आज तक लिया ही नहीं, इतना आनंद है, इतना सुख है, इसमें बहुत सुख समाया हुआ है। जो बाबा कहते हैं योगी आत्माओं को तीनों लोकों का भी राज्य दे दो तो भी उसको फीका लगेगा, इतना आनंद है, इतना सुख है। तो किस स्थिति में? ये आत्मिक स्थिति में है। आत्मिक स्थिति वाले को बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाबा खुद उसको याद करता है। ऐसे बच्चे को बाबा याद करता है, बाबा की कशिश होती है, बाबा की आकर्षण होती है। और जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो उनके अंदर सारी विशेषता, सारे गुण, सारी योग्यता, सारे परमात्म खजाने, परमात्म वरदान, परमात्म शक्तियां, सब कुछ। ऐसे बच्चे ही लास्ट सो फास्ट जाते हैं। तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति। और एक बात बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि एक है देवता जिनके पूरे शरीर रूप की पूजा होती है ना, अष्ट रतन, और फिर 108 16,108। तो अष्ट रतन जो पूजनीय है, सदा पूजनीय है, अष्ट रतन भी बनने का आधार क्या है? जिनके हर कर्मों की पूजा होती, हर कर्म जिनका यादगार बन जाता है। तो बाबा ने उसमें यही कहा जो आत्म अभिमानी बनने में नंबर वन, वही पूज्य बनने में नंबर वन, वही अष्ट रतन बनते हैं, उन्हीं के हर कर्मों की पूजा होती। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति वाले अपनी हर कर्मेंद्रियों को शीतल बना देते हैं, उनके हर कर्मेंद्रियां पावन बन जाती, उनकी हर कर्मेंद्रियां कमल समान बन जाती है। और फिर भक्ति मार्ग में उन्हीं की ही गायन होता है कि नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, क्योंकि संगम युग पर कमल समान बनाया है। तो हम केवल रिवाइज नहीं, लेकिन रिवाइज के साथ अनुभूति करेंगे। तो आप सबने सुना कि आत्मिक स्थिति में इतना इतना फायदा है, ठीक है। अब हम एक मिनट के लिए इस स्थिति का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, ठीक है। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। अपने मस्तक में भ्रकुटी के बीच देखेंगे, मैं बहुत तेजोमय सितारा, तेजस्वी आत्मा। मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत बहुत पवित्र संपूर्ण पवित्र पवित्रता का सूर्य हूं। शरीर लुप्त हो गया, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अनंत शक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, जो शक्तियां शिव बाबा में वही मुझ में, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड, चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस, फील करेंगे मैं बहुत बहुत शांत आत्मा। मेरा चित्त पूरी तरह से शांत हो गया है। मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा शांति धाम में शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। मैं अशरीरी, मुझसे चारों ओर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ओम शांति। ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करना, जैसे एक पॉइंट लिया और उसके ऊपर चिंतन किया, फिर उसी संदर्भ में योग अभ्यास, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, प्रश्न में क्या बोला बाबा ने? आज की मुरली का प्रश्न क्या था? तुम्हें किस बात में फॉलो फादर करना है? हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया, ट्रस्टी बनकर के रहे, ऐसे तुम्हें भी ट्रस्टी बनकर रहना है और कुछ भी उल्टा सुल्टा खर्च करके, है ना, पाप आत्माओं को नहीं देना है। हाँ हाँ, ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा देखते हैं, क्या देखते हैं? कौन सा बच्चा श्रीमत पर चलता है? हाँ, अब आप देखो, पहली बात, ब्रह्मा बाप समान सब कुछ अर्पण करना है, कुछ भी मेरा नहीं। बाबा ने कहा जो बच्चे सब कुछ अर्पण करके चलेंगे, कुछ भी मेरा नहीं, तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं कि मेरा सब कुछ तेरा। जब हम तेरा करते हैं, हम तेरा करते हैं, तो बाबा भी बाबा कहते कि बच्चे मेरी सारी शक्तियां, मेरे सारे खजाने, मेरे सारे वरदान, सब कुछ तुम्हारे लिए। तो अर्पण करना, क्या अर्पण करना है? तो बाबा कई बार कहते ना कि भक्ति मार्ग में तो तुम खूब गाते आए, क्या गाते आए? तन मन धन सब क्या लागे, और घर आते ये स्लोगन भूल जाता है। फिर मैंने सब कुछ बनाया, ये किया वो किया, तुम कहा, है ना? तो सचमुच हम अच्छा। अब बाबा कहते हैं कि वो चीज मुझे दे दो जिस चीज से आप परेशान हैं, वो तो दे सकते हो। अच्छा, और कुछ नहीं आप लगा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो चीज तुम्हें दुख देती है, जो चीज तुम्हें कष्ट देती है, जो चीज परेशान करती है, हा? वो क्या चीज है? हाँ, पांच विकार जो हमारे अंदर अवगुण हैं, बुराइयां हैं, दुख है, चिंता है, समस्या है, बोझ है। बाबा कहता है ये सब मुझे दे दो। पसंद है? नहीं पसंद? और बाबा कहता है ये मुझे दे दोगे तो मैं क्या दूंगा? मैं अपनी सारी वरदान, सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारी अच्छाइयां, है ना बाबा? इसके बदले आपको सारी अच्छाइयां, सारे गुण, सारी विशेषता, सारी शक्तियां, सारे अविनाशी खजाने, सारे वरदान वो देता है, और आपसे लेता क्या है? हाँ, सारे विकार, सारी खराबियां, सारी बुराइयां, हाँ, सारी कमी कमजोरियां। तो पसंद है? इसमें भी बोल नहीं रहे कि पसंद है। अरे ठीक है ना, क्या करें खराबी। इसमें भी पसंद है लेकिन क्या करें, समय पर आ जाता है। तो बाबा ने कहा देखो, देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा और कुछ मांगू तो ना दो। अरे आपकी वो चीज मांग रहा हूं जिससे आप परेशान हैं, हा? वही चीज तो मांग रहा हूं जो आपको दुख देता है, जो आपको कष्ट देता है, वही चीज तो बाबा मांग रहा है। अच्छा, होशियार कौन निकला? बाबा सारी अच्छाइयां देता है, हम सारी कमियां देता है, कौन निकला होशियार? ब्रह्मा बाबा। हम बच्चे है ना, बाबा कहता देखो, बाबा कहता बच्चे ये मेरे से होशियारी कर लो, मेरे से कर लो, दूसरे से नहीं करना। आप मेरे से जो कुछ करना है वो मुझसे कर लो। कुछ अगर आपको किसी से झगड़ने की इच्छा कहती तो सामने वाले से नहीं झगड़ना, मेरे से कर लो, झगड़ लो, मेरे को उलाहना दे दो, जो कुछ करना है मेरे से कर लो। अच्छा, तो सब कुछ अर्पण करना है, और जहां भी मैंपन मेरापन गया, किसी भी चीज में ये मेरा है, तो ये चीज आप नोट करके रख लो। जिस चीज में बार बार बुद्धि जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई देहधारी में, बच्चों में बुद्धि जा रही है, ऐसी बात नहीं। कोई छोटी सी चीज, सुई में भी बुद्धि गई ना, तो अंत समय वही चीज याद आएगी, बाबा की याद भूल जाएगा और हम फेल हो जाएंगे। आप सामने लाओ जो चीज आपको ज्यादा याद आता है, बुद्धि खींचती, वो चीज सामने लाओ और देखो कि यही, और अपने आप को समझाओ कि यही चीज अंत में जन्म जन्मांतर की कमाई से तुम्हें वंचित कर देगा। ए आत्मा, अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी इस चीज से बुद्धि हटा लो, क्योंकि ये चीज विनाशी है, ये चीज आज है, कल नहीं रहेगा, इसलिए इस विनाशी चीज से तुम अपना बुद्धि योग निकाल लो, नहीं तो बहुत बड़ी प्राप्ति से तुम वंचित हो जाओगे। हमें खुद का टीचर खुद बनना पड़ेगा। कोई कितना भी समझाए आपको, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो आप मेरे से भी आप अनुभवी हैं, पुराने हैं, कई इसमें आप मेरे से भी अनुभवी होंगे, पुराने होंगे, ज्ञानी होंगे, और आप अंदर सोचते ये क्या है कल का, ये क्या मुझे समझाएगा, है ना। लेकिन जब आप खुद के टीचर बन करके खुद को समझाते हो ना, तो खुद से अच्छा टीचर और कोई नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को अवश्य परिवर्तन कर लेता है। तो एकांत में बैठ करके रोज अपने आप से कुछ बातें पूछनी चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, हा? अपने आप से पूछो, जितना योग में सुख मिलता है उतना इसमें भी सुख मिलेगा, कि ऐ आत्मा क्या तुम ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख ले रहे हो, क्या तुम्हारी योग में संपूर्ण एकाग्रता होती है, क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो, क्या तुम्हारी कथनी करनी एक है, क्या तुम्हारा जीवन ज्ञान स्वरूप बना है, हाँ? क्या तुम्हारी एक सेकंड में एकाग्रता हो जाती है, क्या ब्राह्मण जीवन का तुम संपूर्ण आनंद ले रहे हो, क्या तुम अपने आप से संतुष्ट हो पूरी तरह से। ऐसे अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछो। अगर अभी संतुष्ट नहीं होंगे, अभी हम ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख नहीं लेंगे, तो कब लेंगे, अपने आप को समझाओ, हे आत्मा तुम कब लोगे सुख, क्या संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा, युद्ध में ही बीत जाएगा, क्या तुम ब्राह्मण जीवन में हमेशा युद्ध ही करते रहोगे, योग का सुख जो बाबा ने भिन्न भिन्न स्थितियां बताई वो कब के लिए बताई है, आज नहीं अनुभव करोगे तो कब करोगे, क्या ऐसे रोज रोज ऐसे ही योग करते रहोगे, ऐसे अपने आप से बातें करो, देखो आप आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो अपने आप को परिवर्तन करने का बहुत सुंदर तरीका है कि खुद के टीचर खुद बन जाना। और बाबा ने कहा, कई बार हम कहते हैं हाँ ठीक है हम कर लेंगे, अंत में बन जाएंगे, कौन संपन्न संपूर्ण बना है, अभी हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरी होती है, अभी तो मैं नया नया हूँ, पुरुषार्थी हूँ, ठीक। ऐसे हम आलस अलबेलेपन के डनलप के गद्दे पर हम सो जाते हैं, तो ऐसे संकल्प आए तो जागरूक हो जाओ, नहीं जो करना है सो। हम बाबा कहते हैं तुम दूसरों को तो खूब सुनाते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है सो अभी करना है, वही चीज आप अपने आप को सुनाओ, हाँ? जो मैं दूसरों को तो खूब सुनाता हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए आज बाबा ने कहा अपने समय को सफल करो, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा देखते हैं कि कौन सा बच्चा श्रीमत, कहा ना प्रश्नोत्तर में कौन सा बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है, तो अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है। 31 दिसंबर 1970 की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म की श्रीमत बताई है। 31/12/1970 आप वो मुरली पढ़ लेना, और वो मुरली पढ़ करके फिर आप एक दिन की दिनचर्या आप बना लो, फिर आप कोई ये कहे कि हमारा योग नहीं लगता, फिर वो कहे कि हमारा योग नहीं लगता, तो कहे उसके मुख से निकलेगा ही नहीं मेरा योग नहीं लगता। अगर हमारी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण है तो योग ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। योग में बैठते हैं तो क्या याद आता है, जो हमने छोटी मोटी भूले किए होते हैं, श्रीमत मर्यादा के नीचे ऊपर कर्म हो जाते हैं, वही तो आता है ना व्यर्थ संकल्प के रूप में। तो अगर आप चाहते हो कि सचमुच इस ब्राह्मण जीवन में मैं आगे बढ़ूं, लास्ट फास्ट जाऊं, है ना, कुछ करूं, कुछ करने के है ना तीव्र पुरुषार्थी बनूं। तो आप ये अव्यक्त मुरली पढ़ करके और सारे दिन की दिनचर्या उस प्रमाण रखो। बाबा ने कैसे आप उठो तो पहला संकल्प क्या हो, मुरली सुनते स्नान करते हो, मुरली सुनते हो, कारोबार में आते हो, आपस में बातचीत, हर कर्म की श्रीमत बताई है। उस श्रीमत प्रमाण हम अपनी दिनचर्या बनाएं। अच्छा, तो अभी दो मिनट में आप सोचो, वो तो अव्यक्त मुरली तो आपने डेट लिख ही लिया, आप पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी आपको सोचना है। दो मिनट का समय है कि बाबा की क्या क्या श्रीमत है, मुख्य मुख्य श्रीमत दिनचर्या के हिसाब से या धारणाओं के हिसाब से या सेवा के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, योग के हिसाब से, बाबा की क्या क्या श्रीमत है आप सोचिए। दो मिनट के बाद आप बताएंगे। नहीं, अभी आप दो मिनट आप साइलेंस में बैठो, आप अपने अंदर पहले सोचो फिर आप बताएंगे बाबा की क्या क्या श्रीमत है, और उसके बाद चेक करना क्या मैं इस श्रीमत प्रमाण चलता हूं, मेरी दिनचर्या इस श्रीमत प्रमाण है। तो आप पहले सोचिएगा। अच्छा, क्या श्रीमत आया बताइएगा आप। बाबा ने बहुत सारी श्रीमत बताई है, आप बताइए। हाँ, दुआएं दो, दुआएं लो। और क्या श्रीमत है? लौकिक कर्म को अलौकिक में परिवर्तन करना, ठीक है। और 8 घंटा योग, देही अभिमानी बन करके रहो, आत्मा रूप में देखो। बहुत सुंदर, कर्म योगी बनो। वाह, बहुत सुंदर, सुख दो सुख। देखिए, आप दो मिनट में ही आपके अंदर कितनी सारी बातें आ गई है ना। तो ऐसे ही हम कई बार ना योग में आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं ना सिर भारी हो जाता है, योग नहीं लगता है। आप छोड़ दो, आप योग करना पहले छोड़ दो, पहले दो मिनट आप मुरली अंदर में रिवाइज कर लो। आप ये करके देखना, दो मिनट अंदर मुरली रिवाइज करके फिर योग करो, उसका रिजल्ट देखना, और ऐसे डायरेक्ट आकर के योग में बैठना, उसका रिजल्ट देखना। क्योंकि जब हम मुरली रिवाइज करके अंदर में रिवाइज करते हैं तो हमारी बुद्धि स्वच्छ साफ बनती है। हम सारा दिन व्यर्थ में रहते हैं और जाकर के दौड़ते हुए जाकर के बैठ जाते हैं योग में, कैसे योग लगेगा? हम परम पवित्र शिव बाबा से योग लगाने जा रहे हैं और बुद्धि सारा दिन हमारा व्यर्थ में रहा तो हमारा उससे कैसे कनेक्शन जुटेगा? तो सबसे पहले दो मिनट आज बाबा ने क्या कहा उसके ऊपर चिंतन करो और फिर बैठो योग में, फिर उसका रिजल्ट देखो। और दूसरी बात, जब भी योग में बैठना है तो आप ये सोच लो, बिना कोई लक्ष्य लिए, बिना कोई संकल्प लिए हमें बैठना ही नहीं है। अगर आप ऐसे आकर के बैठ गए तो आपका ऐसे ही बीत जाएगा समय, घड़ी देखते हुए या एक दूसरे को देखते हुए बैठे योग में बैठे और इधर उधर के संकल्प क्या होता है? योग में बैठते हैं तो अंदर में ही पहले तो मैं आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें आ रही है, फिर बुद्धि गई, अच्छा आज तो सब्जी भी बनाना था, किस चीज का सब्जी है ना, टमाटर भी रखा हुआ है, आलू भी रखा है, बैगन, अच्छा आज बैगन की सब्जी बना लेते हैं, ऐसे फिर मैं आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की चल, और एक कपड़े भी धुलाई करना है, झाड़ू पोछा वो सराहना। आप बैठे हैं योग में, बैगन की सब्जी भी बना लिए, झाड़ू पोछा भी कर लिए, कपड़े भी धुलाई कर लिए और योग पूरा हो गया। हमारा योग ऐसे होता ना। तो इसलिए कहा, या तो मुरली की पॉइंट चिंतन करो। आप दो मिनट के लिए तो हमें 1 घंटा योग करना, तो क्या 2 मिनट अपने को नहीं दे सकते हैं? आप मुरली की पॉइंट चिंतन करो, या आप सोचो कि हाँ भाई एक घंटा योग में बैठना, तो करना क्या है, क्या करना इस एक घंटे में? आप 15-15 मिनट का प्लान बनाओ, भाई 15 मिनट हमें इस स्थिति में बैठना है, 15 मिनट हमें आत्म अपमानी स्थिति में बैठना है, 15 मिनट में फरिश्ता स्वरूप में बैठना है, 15 मिनट बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है, 15 मिनट हमें सकाश देना है, तो कोई ना कोई संकल्प लेकर के फिर योग, फिर देखेंगे आप कितना सुंदर योग की अनुभूति होती है। तो उसके लिए जो आज बाबा ने कहा श्रीमत प्रमाण दिनचर्या, जितनी हमारी श्रीमत प्रमाण दिनचर्या होगी हमारा योग सहज होगा, ठीक है ना? तो ये अव्यक्त मुरली पढ़ लेना, 31-12-70 की अव्यक्त मुरली, और उसमें सारे दिन की दिनचर्या बहुत विधिवत बाबा ने बताई है। आगे हाँ 31 दिसंबर 1970 की ना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा धारणा सार में क्या बोला? हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत, ये अमृत है। ज्ञान क्या है? लेकिन कई बार निंद्रा देवी हमें सुला देती है उस अमृत पीने के समय, ठीक है ना? जब तक बाबा ज्ञान अमृत पिलाते रहते हैं तब तक हम, वो सुला दिया और फिर जब नमस्ते होता है तो हम अलर्ट होकर के बैठ जाते हैं जोर से, फिर हम जोरदार नमस्ते करेंगे, लेकिन जब तक मुरली चलती रहेगी जैसे कि, तो हम ये देखें कि मुरली सुनने, अगर आप देखते हैं मुझे मुरली की सुनने के समय नींद का वाइब्रेशंस आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखें या पीछे टेक न लगाएं, है ना? कुर्सी बड़ी आराम से कुर्सी होती है, पीछे टेक लगा करके, या योग कर रहे हैं या मुरली सुन रहे हैं पता भी नहीं चलता। कई बार बाबा कहते हैं ना शून्य अवस्था, अगर कोई बाजू वाला जगाता भी है कि थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो, तो उसको मार्क दिखाते हैं मैं कितना शांति का अनुभव कर रहा था, हमारे योग में डिस्टर्ब कर दिया। अब देखिए उनको ये भी नहीं पता कि हम योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने लक्ष्य लेकर के नहीं बैठा। तो मुरली भी सुनते समय, मुरली सुनने की कितनी सारी बाबा ने विधियां बताई कि मुरली सुनो। कई बार बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे, मुरली के शुरुआत में ही कई बार बाबा के ये महावाक्य आते हैं कि आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो, और अगर हम आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे तो मुरली की एक एक बात अंदर में समाती जाएगी, लगेगी, है ना? तो ये है कि तो अपने जीवन का ये नियम बना लेना, अरे सब चलता है, आज घर ही पे सुन लेते हैं, रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हर्जा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी बातें आती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप मुरली सुनने के लिए आप सेंटर पर जाते हैं तो आप कितनी बड़ी सेवा करते हैं जो आपको नहीं मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक विदेश की बहन यहाँ अनुभव सुना रही थी कि रसिया देश की बात है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सीआईडी को भेजे सेंटर पर कि जाओ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर देख करके आओ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, आखिर ये क्या सुनाते हैं, क्या समझाते हैं? तो अपने तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर का क्या नियम होता है, क्यों कोई को क्लास में पहले दिन थोड़ी अलाउ करते हैं, पहले क्या करो कोर्स करो फिर अलाउ होता है। लेकिन वो सीआईडी लोग को तो अंदर में देखना था यहाँ होता क्या है, और अपना परिचय भी नहीं बताना था, लेकिन बिना कोर्स के बिना अंदर थोड़ी वो जा सकते हैं, तो कोर्स करना पड़ा मजबूरी बस उनको। अच्छा कोर्स किए फिर क्लास में आने लगे तो नेचुरल है, अच्छी चीज लगी, अच्छी चीज है तो अच्छी चीज लगेगी ही। तो अपने गवर्नमेंट को बताया कि भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो बहुत ऊंची बातें चरित्र निर्माण की की बातें बताया जाता है। तो कहा अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहा इंडिया में है, भारत के अंदर। तो कहा जाओ भारत जाओ, जो इसका हेडक्वार्टर है वहां जाओ, देखो वहां क्या होता है। तो वो लोग यहाँ ज्ञान सरोवर में आए, विदेशियों का यहाँ एक प्रोग्राम चलता पीस ऑफ माइंड, तो वो प्रोग्राम अटेंड किए, ज्ञान सरोवर देखा, पांडव भवन देखा, शांति वन देखा, सब कुछ देखा। और सब कुछ देखने के बाद फिर वो जाकर अपने गवर्नमेंट को मैसेज देते हैं, क्यों ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैला है, बताओ क्या क्या उन्होंने बताया होगा अपने गवर्नमेंट को। शांति मिलती है, सच्चा ज्ञान, चरित्र निर्माण। अच्छा, सिंपल और सैंपल। और आप वो रोज करते हो। उन्होंने कहा देखिए आपको भी नशा होगा कि ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के अंदर रोज सुबह सुबह एक संगठन होता है जिसको कहते मुरली क्लास। ये मुरली क्लास का ही चमत्कार है कि इनकी जो शाखाएं हैं सारे विश्व में फैल गई। तो ये आप सेवा किया ना, अगर आप सेंटर पर नहीं जाते तो ऐसी सेवा होती नहीं, होती ना। आप सेंटर पर रोज जाते हो तभी तो ये सेवा हुई, रोज सुबह का संगठन होता है तभी तो ऐसी सेवा हुई। तो आप ये ना सोचो ये बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, और बाबा की बनाई हुई दिनचर्या पर जो चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर जो चलते हैं, बाबा की दुआएं मिलती, बाबा की आशीर्वाद मिलती, वो आगे बढ़ते अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। आप सिंपल सी बात समझ लो, आपका बच्चा है, आपकी हर बात मानता है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगी उसके लिए, दुआएं निकलेगी, है ना। तो ऐसे बाबा भी ऐसे बच्चों के लिए, हाँ, बाबा के अंदर से भी दुआएं निकलती, बच्चा सदा जीता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो जब तक जीना, और माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, विजयी बनना है। हाँ, महावीर बन, माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। हम महावीर हैं, किसको कहा जाता है महावीर, महावीर के दिल में क्या दिखाते हैं। हाँ, तो हमारे दिल में भी एक बाबा, एक बार बाबा ने कहा आपसे कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है तो क्या जवाब देना है, कहाँ रहता है, हमारे दिल में रहता है। कितनी अच्छी बात, आप लोग तो बड़े समझदार हैं, सारी मुरली की पॉइंट याद है, मैंने बहुत पुरानी मुरली की पॉइंट पूछा, लगता है आप अच्छा अध्ययन करते हैं। हाँ हाँ, तो बाबा ने कहा नशे से बोलो भगवान हमारे दिल में रहता है, और हम उसके दिल में रहते हैं वो। तो आज भी बाबा ने कहा, हाँ आज भी बाबा ने कहा कि सबके साथ तोड़ निभाते दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, ठीक है ना। अब आप देखो, अभी क्या है, आपको इतना आनंद आएगा ना अगर आप चिंतन करेंगे। बहुत जरूरी होता चिंतन करना, दिल की प्रीत माना दिल का प्यार। अगर हम किसी से पूछे आपका बाबा से कितना प्यार है, कितना परसेंट है, तो क्या बोलेगा सामने वाला, 100%, है ना, सभी बोलेंगे हमारा तो बस 100% प्यार है। अच्छा, तो प्यार की निशानी क्या होती है। हाँ, आप देखिए जिससे हमारा प्यार होता है, हमारा क्या लक्ष्य रहता है, उसकी हम हर बात मानते हैं, पहली बात। और जो उसको पसंद है ना वही काम हम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। हम सामने वाले से पूछते हैं अच्छा कुछ भोजन भी बनाना होगा, आपको क्या पसंद है, पूछते हैं ना, ये जो आपको पसंद है वो चीज मैं बनाऊं, या आप क्या चाहते हैं। हर काम उसकी पसंद वाला करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते, करते हैं। अच्छा, अब आगे चलो, अब हम कहते हैं बाबा से हमारा बहुत प्यार है। अच्छा, बाबा को ये ब्राह्मण परिवार कैसा लगता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, और हमें, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी ये ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा, लेकिन एक उसमें, उस ब्राह्मण परिवार में एक ऐसा होता है जिसके लिए हम कहते हैं इससे तो भगवान बचाए, इससे तो बात करने की इच्छा नहीं होती है। अब आप सोचो, अब लाओ बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मुझे एक एक आत्मा बहुत प्रिय है। हाँ? बाबा कहते मुझे हर ब्राह्मण आत्मा बहुत प्रिय है। हम कहते हैं इसकी तरफ मुझे देखना भी मुझे पसंद नहीं, इसे तो बोलना मुझे पसंद नहीं है, इसके मुख से हमेशा पत्थर निकलता है, कुछ भी निकले, लेकिन उसको किसने चुना? बाबा ने चुना। हमारा लक्ष्य क्या है? किसके समान बनना? बाबा समान बनना। बाबा को वो पसंद है, हमें नहीं पसंद, तो कैसे बनेंगे बाबा समान? हा? बाबा समान बनना है, बाबा से प्यार है, तो जो उसको प्रिय लगता हमें भी लगे ना, तभी तो बनेंगे। बाबा को यज्ञ सेवा बहुत प्यारी है। हम कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं, क्या मैं ही हूं क्या? हम ही दिखाई पड़ते हैं और कोई नहीं दिखाई पड़ता है, हम ही कोई टीचर बहने, मैं ही मिलता हूं, और सारे मुरली सुन करके चले जाते हैं, हम ही लास्ट में बजते हैं, ये कर दो वो कर दो, और दूसरे नहीं है क्या? आपको तो ये सोचना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, बाबा ने सबको भेज दिया और मेरे को रोक लिया, मेरा ही बाबा भाग्य बनाना चाह रहा है, है? ये भी तो सोच करके हम आनंदित रह सकते हैं। और बहनों को हमारी सेवा पसंद आती है तभी तो मुझे रोकते हैं, दूसरे को क्यों नहीं रोका, मुझे ही क्यों बोला गया, क्योंकि मेरा जरूर इनको सेवा अच्छी लगी तभी मुझे कहा गया। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही आप, इसकी लिस्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना? बाबा को क्या क्या पसंद है, हाँ? और फिर लिस्ट बना करके एक एक चेक करो, क्या मुझे भी पसंद है? बाबा को यज्ञ सेवा बहुत पसंद है, क्या मुझे भी पसंद है? कोई मैं कारण तो नहीं निकालता हूं, कोई बहाना तो नहीं करता हूं। अगर पसंद, जो चीज पसंद होता है उसके लिए कोई कारण नहीं होता, उसके लिए कोई बहाना, उसके लिए तो हम बीसों नाखून का जोर लगा देते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो बस अंदर में यही संकल्प, जो बाबा को पसंद वही हमें भी पसंद, जो बाबा को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं। अब एक मिनट के लिए आप साइलेंस में हो जाएंगे और सोचेंगे बाबा को क्या क्या पसंद है, और आप चेकिंग करेंगे ईमानदारी के साथ, क्या ये मुझे भी पसंद है? ओम शांति। आया उत्तर? कुछ बताइए, बाबा को क्या पसंद है? ड्रामा बहुत बहुत बढ़िया बताया, बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है और हमें भी पसंद है, हुँ? लेकिन कई बार ड्रामा की कोई सीन देख करके हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ? बोलते कि नहीं बोलते? बाबा के, और बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा का हर सीन कैसा है? बहुत बहुत कल्याणकारी है। और हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत अकल्याण हो गया, है ना? तो अकल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हमें पता ही नहीं है। हाँ, कल्याणकारी बाबा का हाथ और साथ है, तो ड्रामा की हर सीन बहुत बहुत अच्छा। जैसे किसी के सामने कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको हम बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, ड्रामा समझो, हाँ? और हमारे सामने घटना घट जाती है तो वो फिर वही व्यक्ति आता है और हमें समझाता कोई बात नहीं, तो कहते हम नहीं नहीं हमारे सामने बात ही इतनी ऊंची आई है, आपको क्या पता इसका। हम तो ऐसे ही, हम ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी है, कल्याणकारी, लेकिन हम वर्तमान देख करके ना, अरे ऐसे कैसे हुआ, लेकिन हर चीज में कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा का हाथ और साथ है। अच्छा, ऐसे आप लिस्ट बनाओ। और भी कुछ, जैसे बाबा को, हाँ, उपकार करना, संपूर्ण पवित्रता, मुरली, है ना, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है, लिस्ट बनाना। अच्छा, आगे बढ़ो, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कहा कि अपना सब कुछ क्या करना है, रूहानी सेवा में सफल करना है। आप जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए, एक का पदम गुना है ना, एक जमा करेंगे और आपको वापस पदम गुना होकर के मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आप चिंतन कर लेना है कि क्या क्या हमें सफल करना है संगम युग पर, और जो हम सफल करते हैं तो उससे हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा ये देखना है कि कहीं व्यर्थ ना जाने पाए। जैसे बाबा ने सब कुछ अपना समर्पण किया, अर्पण किया, ऐसे अर्पण करके ट्रस्टी बन करके रहना है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, करण करावन हार बाबा है, मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। वो करा भी वही रहा है तो कर भी वही रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो जब हम करण करावन हार बाबा को समझ करके चलेंगे, अपने आप को निमित्त समझेंगे, तो हम कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, किसी भी बात का बोझ नहीं होगा। अच्छा, वरदान में क्या कहा, डबल लाइट स्थिति द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है कि तुम दो चार घंटे के योगी या दो चार घंटे के सेवाधारी नहीं हो, लेकिन तुम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हो। निरंतर हमारी योग युक्त स्थिति बनी रहे। तो कर्मयोगी, कर्मयोगी बन करके रहें। कैसे रहेंगे कर्मयोगी, आप कुछ नियम बना लें अपने जीवन का। जैसे हम बैठते हैं, अभी भी आप बैठे हैं, सारे दिन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि वो नेचुरल हमारा चलता रहता है, बैठना, उठना, चलना, देखना, बात करना, ऐसे ऐसे हम बैठे हैं। अब ये स्थूल शरीर सोफा पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, या बेड पर बैठा, कहीं भी बैठा, लेकिन हमें कहां बैठना है, जब भी बैठे इस संकल्प के साथ, शरीर कहां भी बैठा उसे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे कहां बैठना है, भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर ही बैठना है, आत्मा राजा बनकर के ही बैठना है। बाबा ने बैठने के बहुत सुंदर, बाबा की गोदी में बैठो, भगवान की गोदी, भगवान के दिल रूपी तख्त पर बैठो, हाँ? इतना अच्छा स्थान और मिलेगा क्या, हमें भगवान के दिल रूपी तख्त पर बैठना है, बाबा की गोदी में बैठना है, भ्रकुटी पर बैठना है। और जो आज भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर बैठेंगे वही भविष्य में विश्व राज्य तख्त है ना, जो आज अकाल तख्त वही विश्व तख्त पर बैठेंगे, ठीक है ना। बैठना है तो ऐसे, अच्छा आप चलेंगे तो, चलेंगे तो ये नियम बनाओ, जब भी हम चलेंगे तो लाइट के शरीर में चलेंगे, फरिश्ता बन करके चलेंगे, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे, है ना। चलना है माना ऐसे साधारण तरीके से नहीं, लेकिन लाइट के शरीर में। बाबा शिव बाबा जैसे हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है, शिव बाबा से हम कंबाइंड हो गए हैं, उसकी निरंतर सकाश जैसे हमारे ऊपर बरस रही है, बाबा से कंबाइंड होकर के चलो। चलते हुए कभी शांति के वाइब्रेशंस, कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस, कभी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलो। और जब किसी को देखना है तो आत्मा भाई भाई की, और जब हम आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाले का क्या दिखाई पड़ेगा, आत्मा दिखाई पड़ेगा। और हाँ, आत्मा देखेंगे तो सामने वाले की गुण विशेषता ही दिखाई पड़ेगा, अवगुण नहीं। हमारी जब नजर आत्मा के बजाय शरीर के ऊपर जाती है तब अवगुण दिखाई पड़ता है। आप आत्मिक स्थिति में रहें, आपके अंदर निगेटिव संकल्प चलेगा ही नहीं। आप चला करके देखो, आत्मा बनो और निगेटिव संकल्प चलाओ, आपको चल ही नहीं सकता। देह भान में आएंगे तभी निगेटिव संकल्प चलेगा, और निगेटिव संकल्प चलेगा तो हमारी दृष्टि अवगुणी बनेगी। तो जब भी देखना है आत्मा को देखना है, जब भी देखना है तो उसके गुण विशेषता को देखना है, जब भी देखना है तो एक बार बाबा ने कहा आप अपनी दृष्टि को बना लो पिचकारी, और जो भी सामने कोई एक आया मेरी दृष्टि से पवित्रता के वाइब्रेशन, मैंने इसको पवित्रता के रंग से रंग दिया। दूसरा आया, मैंने अपनी दृष्टि से इसे शक्तियों के रंग से रंग दिया। तीसरा आया, मैंने अपनी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशन से। आप ये लक्ष्य बना लो कि कोई भी मेरे सामने आएगा और मेरी दृष्टि पड़ेगी तो खाली नहीं जा सकता। ये आपका सकाश देना हो जाएगा, नेचुरल आपका है ना, आपकी सेवा होती रहेगी, मनसा सेवा जिसको हम कहें, प्रैक्टिकल रूप में होती रहेगी। और कोई नहीं है तो आप बाबा से लेते रहो शांति शक्ति। तो कर्मयोगी बनने के लिए अलग अलग कर्मों में हम योग अभ्यास करेंगे। तो जैसे आपने बैठने का बनाया तो कहाँ बैठेंगे, भृकुटी रूपी सिंहासन पर, और दूसरा बाबा की गोद में बैठेंगे। अच्छा आगे बढ़ो, देखेंगे तो आत्मा देखेंगे, गुण विशेषता देखेंगे, और भी चलेंगे तो फरिश्ता बन करके चलेंगे, और भी कर्म जैसे भोजन करेंगे है ना, भोजन करेंगे तो बाबा की याद में करेंगे है ना। ये नियम बना लो साइलेंस में, बाबा की याद में। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे योग युक्त होकर भोजन करते हैं वो भोजन दवाई का काम करता है तो दुआ का भी काम करता। कुछ दिन पहले की अव्यक्त मुरली है ना, दवाई का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। आप सोचिए, जो दवाई भी काम ना कर सके कहते हैं उसके लिए भाई दुआ करो, ये दुआ का बल सबसे बड़ा होता है। तो आप बाबा ने कितनी सुंदर विधि, हम कोई डॉक्टर आ जाता है पीछे पड़ जाते हैं, हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी ये दवाई बताओ। बाबा ने कितना, शिव भगवान वाच परमात्म महावाक्य है साफ स्पष्ट कि योग युक्त होकर भोजन करने से आप कैसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, वो दुख भंजन भोजन बन जाता है। ऐसे भोजन के अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन आ जाते हैं और नेचुरल हमारा धीरे धीरे हो जाता है। तो जब भी भोजन करेंगे बाबा की याद में करेंगे। बाबा ने कहा है ना कि हर गिट्टी में बाबा को याद करना है, और अगर एक गिट्टी भी बाबा की याद में नहीं किया तो पता वो गिट्टी कौन खा जाता है। वाह आप लोग तो सच में बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं। बाबा ने ये कहा था कि वो गिट्टी माया खा जाती है। अच्छा अब आप सच सच बताना, हम कहते हैं ना अभी प्रीत वाली बात आ नहीं कि बाबा का हमारा सबसे ज्यादा प्यार है ना, है ना प्यार। हाँ पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं ना। अरे ये बात तो आप सहज बड़े नशे से बोलो ना, है हाँ है। अच्छा बाबा से हमारा बहुत ज्यादा 100% प्यार है। अच्छा जब हम भोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा गिट्टी किसको खिलाते हैं, बाबा को या माया को। माया को प्यार बाबा से, गिट्टी माया को खिलाना है। कमाल है आपका प्यार तो अजीब है भाई, प्यार बाबा से रखो खिलाओ माया को। अच्छा वो अनजान बस था, लेकिन अभी क्या करना है, जो हम बाबा की याद में करेंगे समझो हमने बाबा को स्वीकार कराया, और जो बाबा की याद में नहीं किया वो माया खाई है ना। तो आपने पूरी ईमानदारी के साथ बताया कि हम माया को ज्यादा खिलाते हैं, लेकिन अब किसको खिलाओगे आगे से। हाँ तो ये भट्टी में संकल्प करके जाना कि बाबा अभी अनजान बस तो माया को खिला दिया, लेकिन अब माया को नहीं खिलाएंगे, अब हम आपको ही खिलाएंगे अर्थात आपके याद में खाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब कई बार कई लोग कहते हैं ना, वो बात तो ठीक है कि आप कहते हो बाबा की याद में रहो, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि बाबा की याद में रहूं, लेकिन होता क्या है कि पूरा भोजन पूरा हो जाता है उसके बाद, है ना। भोग तो हम सब लगाते हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, और भोग लगाने के बाद होता क्या है, आपस में बातें करते या ऐसे बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि मुझे पूरा समय बाबा को याद करना था। तो ऐसे एक माता ने मेरे से प्रश्न पूछा, इसका भी कोई तरकीब है आपके पास कि पूरा समय बाबा की याद रहे? मैंने कहा हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो उसको मैंने कहा ऐसा करो, जब एक गिट्टी उठाओ ना, तो बाबा ने जो पांच स्वरूप का अभ्यास बोला है तो वो एक एक गिट्टी में जोड़ लो। एक गिट्टी उठाओ मुंह में डालो तो अनादि स्वरूप परम धाम में ही बैठे रहो, दूसरी गिट्टी उठाओ तो आदि स्वरूप स्वर्ग में पहुंच जाओ, तीसरी गिट्टी उठाओ तो पूज्य स्वरूप भक्ति मानव भक्त हमें भोग लगा रहे हैं, भोग स्वीकार करा रहे हैं, और चौथी गिट्टी उठाओ तो आप बहुत सुंदर एक अभ्यास कर सकते हैं। आपने देखा ना डायमंड हॉल में बाप दादा कैसे मुस्कुराते हुए दादी के मुख में डाल, तो ऐसे आप दादी की जगह पर आप अपने आप को देखो कि बाबा मुस्कुराते हुए हमारे मुख में डाल रहे हैं, और मैं भी कभी कभी बाबा के मुख में डाल रहा हूं, है ना, कितना सुंदर अभ्यास हो जाएगा। और लेकिन ऐसा नहीं कि कौन से आपके सामने हो, आप इतने मगन हो जाओ कि उसी के मुख में डाल दो, कॉन्शियस में वो भी कहे कि ये क्या है भाई बस आप इस फीलिंग में कि बाबा मुझे खिला रहे और मैं बाबा को खिला रहा हूं। अच्छा, और पांचवा गिट्टी फरिश्ता स्वरूप वतन में पहुंच जाओ बाप दादा के हाथों से, तो आपका पूरे भोजन में, बाबा तो ने कहा ना सारे दिन में कम से कम 8 बार करो, आपका तो कई बार हो जाएगा, है ना। तो ये करना, आपका पूरा समय योग युक्त भोजन और बाबा की याद। तो ऐसे आप नियम बनाना, खाएंगे सोएंगे चलेंगे सोएंगे तो कपड़ा पहनेंगे तो, ऐसे अलग अलग कर्मों का बना लो लिस्ट कि ये करेंगे तो ऐसा, ये करेंगे तो ये अभ्यास करेंगे। अच्छा आगे चलो, स्लोगन, जिसकी दिल बड़ी है तो। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो बाप दादा बड़ी दादी से, बड़ी दादी को वरदान दे रहे थे, तो बाप दादा ने बड़ी दादी को कहा, नाम भी देखो बड़ी दादी बड़ी दादी माने बड़ा दिल, तो बाबा ने कहा कि ये बड़ी दिल वाली है ना, इसकी बहुत बड़ी दिल है, बाबा ने दादी को कहा। तो बाबा, दादी कहती बाबा बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा परिवार बैठा है, तो बड़ी दिल तो होगी। अब आप दादी देखिए, दादी की बड़ी दिल की जहां बात आती है, जब भी ऐसा कितने भी लोग बैठ, मैं तो यहां तक कि डायमंड हॉल में देखा, इतने डायमंड हॉल भरा है, अच्छा आप लोग क्या क्या चाहिए, क्या खाओगे, क्या आप लोगों के लिए बनवाया जाए, क्या किया जाए, है ना। आप सोचिए, एक बार तो 5000 कुमार बैठे थे, अरे दादी ने कहा 5000 कुमार, इन्होंने तो भगवान से शादी कर ली है, इनके सिर के ऊपर ताज होना चाहिए मुन्नी बहन इनको ताज। अच्छा, आगे पीछे वाले डरते दादी क्या बोल दे। दूसरे दिन वो कागज के गत्ते का उस पर चिपका उपका करके चमकीला कागज, सबको ताज पहनाया गया मतलब दादी ने बोला वो काम होना ही है। अच्छा, फिर एक बार दादी ने पूछा, अच्छा क्या खाओगे, जो आप बोलोगे। तो किसी एक छोटे बच्चे ने बोल दिया, दादी आइसक्रीम। अच्छा आइसक्रीम, हाँ भाई सबको आइसक्रीम खिलाया। आप सोचिए, एक दो चार लोगों की बात नहीं, हजारों लोगों की बात, और कोई एक बोल दिया। और दादी ने अंतिम अंतिम दिनों में मैंने देखा कि दादी ने कहा कि गांव गांव में, घर घर में, कहीं भी ऐसा बाकी ना रहे, सब जगह बाबा का परिचय मिल जाए। हाँ, विदेश में कोई भी देश बाकी ना रहे और भारत में कोई भी गांव बाकी ना रहे, ऐसी सेवा हुई है। तो फिर किसी ने कहा, दादी एक हेलीकॉप्टर खरीद दिया जाए, हम जाकर के विदेश की सेवा करके आएंगे। तो दादी ने कहा, हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात है, कितने में आता है मतलब दादी ने कहा, आप सेवा करने के लिए तैयार रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सेवा में कभी आप देखिए ये बड़ी दिल। तो सेवा में अगर हमारी बड़ी दिल होती है तो बाबा भी बाबा ने कहा जहां सच्ची दिल है, साफ दिल है, बड़ी दिल है, तो बाबा ने, बाबा के अव्यक्त मुरली के महावाक्य, बाबा ने कहा अंत समय, विनाश के समय जब पानी पीने योग्य नहीं होगा, भोजन करने योग्य नहीं होगा, ऐसे समय पर मैं बंधा हुआ हूं, अंत तक उनको दाल रोटी खिलाता रहूंगा। तो बाबा आपको भगवान खुद बोला है कि मैं बंधा हुआ हूं, अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा। बस हमारा काम है सच्ची साफ दिल होकर के रहना। तो ऐसे आप रोज की मुरली, आप खुद आज की मुरली के हिसाब से कि रोज एक, मैं तो ऐसे करता हूं कि जब शाम को खास करके योग में बैठता हूं तो आज बाबा ने क्या कहा, दो चार मिनट पहले उस पर मैं सोचता हूं और है ना, फिर उसके बाद योग करता हूं। तो रोज आप ये नियम बनाओ कि रोज की एक मुरली, जब मुरली पढ़ते हो या सुनते हो तो एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करो। और बहुत अच्छी तरीका तो ये है कि अगर आप लिख लो तो वो आपका अपना बन जाएगा, जीवन में कभी भूल नहीं सकता, और फिर ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी, योग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप मुरली रोज सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तो मुरली का भी सुख मिलेगा और योग का भी सुख मिलेगा। ओम शांति।